الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم میرے دوستو میرے پردہ نشین محترمہ مائیں اور بہنیں بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسان ہے اس امت پر جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. ان احسانوں میں سب سے بڑا احسان جو دنیا میں بھی قبر میں بھی اور آخرت میں کام آنے والا ہے وہ ہے قرآن کریم. وہ ہے قرآن کریم. قرآن کریم ایک ایسی دولت ہے کہ دنیا میں بھی کام آئے گی آخرت میں بھی. اور حساب کتاب کے وقت بھی کام آئے گی. رمضان شریف کی جو حدیث ہے اس میں لکھا ہے القرآن والصیام یشفعان یوم القیام. قیامت کے دن دو چیزیں, یعنی جیسے حافظ قرآن ہو, جیسے حاجی ہو, جیسے نیک آدمی ہو, جیسے نبی, یہ لوگ بھی سفارش کریں گے. ایسے کچھ اعمال بھی ہے وہ بھی اللہ کے سامنے سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائیں گی. ان تمام, جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جہنم میں جانے کے لیے اس کے حکم ہو جائے گا کہ جہنم میں جائے گا اور وہ اپنے ساتھی کو دیکھے گا اور نیک آدمی کو دیکھے گا اور اس کو کہے گا مجھے پہچانتا ہے, نومی, میں نے دنیا میں تمہیں ایک جگ پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے, یا میں نے تم کو دنیا میں ایک گلاس پانی دیا تھا پینے کے لیے, آج میری سفارش کرو. وہ آدمی اللہ سے کہے گا, اللہ تعالیٰ اس ایک گلاس کی برکت سے اور ایک وضو کے پانی سے اس آدمی کو کہے گا جا اس کی سفارش کر کے جنت میں لے جا. حافظ قرآن سے کہا جائے گا, چاہے 10 آدمی ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہے, جہنم واجب ہے, ان 10 کو تو چوز کر لے تیری فیملی میں سے جس پر جہنم واجب ہے ان کو لے جا جنت کے اندر. تو جن کے اوپر جہنم کا حکم لگ چکا ہے گناہوں کی وجہ سے ان کو یہ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا, جہنم نہیں ہوگا. ویسے ہی حاجی ہے, حج کرنے والا, ویسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں انسان کے لیے حکم دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے تو سفارش کر, تو سفارش کر, تو سفارش کر. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہیں گی یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ امام غزالی نے لکھا کہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ایک جگہ میں جمع ہیں, وہ اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں, کہا ان کو کہو جاؤ جنت میں چلے جاؤ, تو ان کو کہیں گے جاؤ, وہ کہیں گے ہم ماں باپ کو لیے بغیر نہیں جائیں گے. جو بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر چکے ہیں وہ سب کے سب وہاں پر ہیں, وہ سب کے سب, اور وہ اپنے ماں باپ کو لے کر جنت میں جائیں گے. کتنے بچے شہید ہو گئے؟ 10,000 بچے شہید ہو گئے فلسطین میں, اپنے ماں باپ کو لے کر جنت میں جائیں گے, انتظار کریں گے, وہ نہیں جائیں گے اکیلے, انگلی پکڑیں گے, ماں اور باپ کی جنت ہے. تو کچھ اعمال بھی ہے, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو قبر میں سلایا جاتا ہے تو سر کی طرف قرآن آتا ہے, دانی طرف نماز آتی ہے, اور لیفٹ سائڈ میں روزہ ہے, اور پیر کی طرف زکات اور حج اور عمرہ ہے. گویا اس کے اعمال چاروں طرف سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اگر سر کی طرف سے عذاب آئے تو قرآن اس کو نہ کہہ دیتا, دانی طرف سے آئے تو نماز اس کو نہ کہتی ہے, بائیں طرف سے لیپ سائڈ سے آئے تو روزہ اس کے لیے ڈال ہے, شیل ہے. الصوم جنۃ الحدیث میں ہے کہ روزہ از لائک اے شیل, تو لیپ سائڈ سے اس کی حفاظت کرے گا, پیر کی طرف سے کہ بھئی یہ چلتی جا چل کر جا کر حلال روزی کماتا تھا پورا سال, اس میں سے اللہ کے راستے میں زکات دیتا تھا, تو پیر کی طرف زکات ہوگی, یہی مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے حج کے لیے عمرہ کے لیے جاتا تھا, تو یہ مال پیر کی طرف سے اس کے لیے حفاظت بن جائے. تو یہاں بھی اعمال, اور بعض روایت میں ہے کہ یہی سورۃ الملک تبارک الذی بید الملک ایک خوبصورت شکل میں اس کے پاس آ جائے گی قبر میں, اور فرشتوں کو عذاب سے روکے گی اگر کوئی روزانہ رات میں سورۃ الملک کو پڑھ لے. بعض روایت میں سورہ سجدہ بھی ہے, بعض روایت میں سورہ ملک ہے, بعض روایت میں دونوں ہے. سورہ ملک کا ذکر زیادہ ہے, پڑھ لے تو فرشتہ کہے گا کہ تو ہٹ جا, مجھے اس کا حساب کتاب کرنا ہے. وہ کہے گا حساب لے لو, لیکن میں ہٹنے والی نہیں, اگر عذاب دینا چاہے تو پھر اللہ مجھے اپنے قرآن سے نکال دے, چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورہ ملک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچاتا ہے. قیامت تو بعد کی بات ہے, پہلے کئی ہزار سال یہ قبر میں سوئے گا, تو قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے سب سے آسان چیز ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لے, رمضان کا مہینہ آئے روزہ رکھ لے, قرآن کی تھوڑی تلاوت کر لے, جتنا ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق زکات دیتا رہے, زکات دیتی رہے اپنے سونے کی چاندی کی اپنے پیسوں کی, اور اگر حج فرض ہو گیا تو حج پڑھ لے, زندگی میں ایک بار ہے, سال میں زکات ایک بار ہے, روزہ سال میں ایک بار ہے, بس نماز اور قرآن کی پابندی کریں, اور ساتھ ساتھ میں سونے سے صبح میں یاسین شریف پڑھ لیں, 10 قرآن کا ثواب ہے, اور رات میں سونے سے پہلے سورہ تبارک پڑھ لیں, جمعہ کا دن آئے سورہ کہف پڑھ لیں, بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, کوئی مشکل ہے, صرف ہمارے ٹی وی اور ہمارا فون اور ہمارے دنیاوی کام کاج ہمیں کرنے نہیں دیتا, بہت آسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے سینے میں سورہ تبارک منہ پر ہو, 30 آیت ہے, ایک ایک آیت بھی یاد کرے تو 30 دن میں یاد ہو جاتی ہے, ایک ایک آیت بھی اگر میں ریپیٹ کر لوں ایک آیت 30 ٹائم 40 ٹائم 50 ٹائم تو آج کی آیت مجھے یاد ہو گئی, کتنی ٹائم لگے, 10 منٹ لگے گی, پھر اس کے بعد آپ کو قرآن کھولنے میں, یہاں سونے بھی تو سوتے سوتے بھی پڑھ لیا, وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے تو اس میں پڑھ لیا, امام باقر رحمۃ اللہ نے 2 رکعت میں سورہ تبارک پڑھ لیتے تھے, الحمدللہ تہجد میں ہم پڑھ لیتے ہیں, یاسین شریف پڑھ لیتے ہیں, بہت ضروری چیز ہے, یہ کام کی چیز ہے, چونکہ قبر سب سے پہلے ہے نا, इंसान की मौत आएगी तो पहले तो कबर है, अभी कयामत तो बाद का दिन है, कबर ही में इसकी सिफारिश हो चुकी है, तो बाद में तो आसान है। इसीलिए तो हजरत उस्मान क्या कहते थे कि कबर पर क्यों रोते थे, कबर पहली मंजिल है आखिरत की मंजिलों में से, फर्स्ट फुट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप्स है पूरी स्टेज की जन्नत तक पहुंचने की। अगर पहली सीढ़ी पर आपने कदम रख दिया तो फिर आसान है, कामयाब हो गए तो आसान है। तो कबर में आदमी कामयाब हो गया तो फिर तो आसान ही आसान है, तो उसके आमान उसके पास आ जाएंगे। अगर तुम्हें इसे अजाब देना है तो अल्लाह मुझे निकाल दे कुरान से, सूरह तबारक अल्लज़ी लड़ेगी, आर्ग्यूमेंट करेगी। लड़ने का मतलब नहीं कि कोई तलवार लेके अल्लाह के सामने, अल्लाह पाक तेरे नबी ने कहा, तेरे नबी ने कहा, तेरे कहा है। एक साहब ही फरमाते हैं मिश्कात शरीफ में, वो जंगल में वो कभी क्या कहते हैं किसके लिए जाते हैं तफरी, क्या कहते हैं वो जंगल में आराम के लिए एक दो दिन ना वो कैरावन लेके चले जाते हैं ना, तो वहां पर तंबू लगा दिया, तंबू ऐसा लगा दिया। अब तंबू में सोए हैं रात में ईशा के बाद, तो देखा कि वहां कहीं से सूरह तबारक पढ़ने की आवाज आ रही जमीन के अंदर से, देखा सूरह तबारक की आवाज आ रही, अभी देख इधर उधर तो जमीन के अंदर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर वाक्य सुनाया, फरमाया ये आदमी दुनिया में सूरह तबारक पढ़ता होगा, कब्र में भी सूरह तबारक पढ़ रहा है। और फिर वो पूरा वाक्य सुनाया कि सूरह तबारक तुम्हें कब्र में अल्लाह के अज़ाब से बचाएगी। सही कह रहा हूं, आप यकीन जाने मेरी माए और बहन इतनी आसान है, अगर आपको मुंह पे है बाय हाथ है तो बहुत आसान है, अगर नहीं है तो कुरान खोलकर पढ़ लिया जाए। एक बार और याद रखे, नीयत में अगर अल्लाह पूरी जिंदगी में सूरह तबारक पढ़ती रहूंगी पूरी जिंदगी, और माशाल्लाह आप रोजाना पढ़ते हैं, और हैज के अय्याम आ गए जिसमें आप कुरान नहीं पढ़ सकते, तो आपको हैज के अय्याम में न पढ़ने पर भी सवाब दिया जाएगा, क्योंकि आपकी नीयत है। ये तो एक अल्लाह की तरफ से उज्र है, अगर न होता तो आप पढ़ती, लेकिन आप रोजाना पढ़ रही है। इसीलिए जवानी में इबादत करने वालों को बुढ़ापे में जवानी की इबादत का सवाब मिलेगा। आई बात समझ में? इसलिए कुछ आमाल ऐसे हैं जो कब्र में भी सिफारिश करेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे, अल्लाह के अजाब से बचाएंगे, और यकीनन अल्लाह पाक कुरान की सिफारिश को कबूल करता है, ना नहीं कहेगा। और कुरान करीम मेरी और आपकी जो पाबंदी से पढ़ते हैं सुनते हैं, उसकी उंगली पकड़ कर कहेगा, और रमजान के रोजे के चलो अल्लाह के पास मैं तुम्हारी सिफारिश करता हूं, और कुरान की सिफारिश और रोजे की सिफारिश कबूल की जाएगी। क्यों कबूल ना हो भाई, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह के कलाम की तो जाहिरी बात है ना, सिफारिश जरूर कबूल होगी। और रोजा भी अल्लाह ने कहा मैं उसका बदला दूंगा, तो उसका बदला क्या है, अजाब नहीं, सिफारिश हो गई जन्नत में जा। तो अल्लाह पाक ने, और हमारे हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो हर फर्ज नमाज के बाद तस्बीहात की पाबंदी करता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, तो जब ये कब्र से उठेगा तो उसके आगे अल्लाह अकबर एक खूबसूरत शक्ल में होगा, दानी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह, लेफ्ट साइड नहीं दानी तरफ सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, झंडा ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे अल्लाह अकबर, दानी तरफ ला इलाहा या आगे ला इलाहा इल्लल्लाह, और दानी तरफ क्योंकि आम तौर पर अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह और फिर सुभान अल्लाह, और हर काम के अखीर में हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह पीछे होगा, जैसे हर काम के पीछे होता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमना, हर चीज में
सो ये उसके दरमियान में आदमी चलेगा, वो या चार सिक्योरिटी उसके साथ है, चार बड़े बड़े आम फौज उसके साथ है, और उसकी रोशनी में अल्लाह के सामने जाएगा। देखा अमल, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई मुश्किल है? ये तो सलाम फेरा, और अभी किचन में जाना है, सलाम फेरा अभी खाना देखना है, अभी उसके पास टाइम ही नहीं है तस्बीहात पढ़ने की, तस्बीहात पढ़ने की टाइम। हालांकि मैंने पहले भी सुनाया था शायद आपको याद हो, तस्बीहात की दो किस्में है, तस्बीहात फुकरा और तस्बीहात फातिमी। तो जाहिरी बात है कि फुकरा क्यों कहा है, वो गरीब साहबा थे, अगर तुम तस्बीहात पढ़ोगे तो तुम्हारा सवाब और मालदार साहबा ने जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया उससे ज्यादा सवाब मिलेगा। इसलिए ये कब्र से उठने के बाद है, कब्र से उठने के बाद, और फिर कुरान सिफारिश करेगा वहां पर जी, रोजे सिफारिश करेंगे, बच्चे सिफारिश करेंगे, माँ बाप भी कहेंगे, नेक आदमी भी कहेंगे, नमाजें इबादतें बहुत कुछ हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ी मेहर आगे दोबारा कि अल्लाह ने नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या दी हमें, कुरान करीम दिया, कुरान करीम दिया। इसीलिए कुरान एक ऐसी किताब है उसके अलावा कोई किताब नहीं, अजान से पहले भी नहीं बोलना उज़बिल्लाह बिस्मिल्लाह, नमाज से पहले भी उज़बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं बोलना है, मुस्लिम इकामत सॉरी इकामत से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर नहीं बोलना, बिस्मिल्लाह का नहीं बोलना। कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि उसके शुरू में अल्लाह ने कहा है कि तुम्हें औज़ुबिल्लाह पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फैजा करात अल कुरान फस्तईज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखा, जब तुम कुरान को पढ़ो तो सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहो, ये है औज़ पना मांगना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी चीजों से पना मांगा करते थे, कभी कहते थे औज़ बेका या अल्लाह तेरी जात से पना कि तू गुस्से न होना मुझ पर, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, कब्र के अज़ाब से, व औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, दज्जाल के फितने से, व औज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, दुनिया और मौत के फितने से, दुनिया की जिंदगी के फितने बहुत सारे, आदमी कभी क्या 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 हो जाता है, उन तमाम फितनों से पना मांगनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार कसरत से करना चाहिए। सबसे बड़ा इस्तिग़फ़ार बुखारी शरीफ में है, सैयदुल इस्तिग़फ़ार बुखारी शरीफ में, अजीब इस्तिग़फ़ार, एक बार सुबह पढ़ ले एक बार और दिन में उसकी मौत आ गई तो जन्नत में, बुखारी शरीफ में है, शाम में एक बार पढ़ ले एक ही बार, लेकिन कड़े कौन, असल तो मसला हुआ वहां आके अटक जाता है, शाम में एक बार पढ़ ले तो सुबह तक में मौत आ जाए जन्नत में, जन्नत वाजिब, जन्नत वाजिब, इसको सैयदुल इस्तिग़फ़ार, ये सही हदीस सुना रहा हूं। हाँ सैयदुल इस्तिग़फ़ार, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक्तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु औज़ु बिका मिन शर्रि मस्ततअ मा सनअतु अबू बिनिअमतिका अबू बिनिअमतिका व अबू बिज़म्बि फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला ये तो सबको पढ़ना चाहिए, मौत आएगी या तो दिन में आएगी या तो रात में आने वाली है, दिन में आएगी या तो रात में आएगी, और कोई तीसरा जगह है नहीं, मौत तो कभी भी आनी आनी है, बस एक बार पढ़ ली, एक मिनट लगती, एक मिनट भी नहीं लगती, आजकल तो मोबाइल में सब कुछ तलाश कर सकते हैं, तो सैयदुल इस्तिगफार क्यों नहीं तलाश करते? लिखिए बुखारी, सैयदुल इस्तिगफार तो पूरी दुआ आ जाती है, हमें सिर्फ देख के पढ़ना है। और मॉर्निंग इवनिंग दुआओं में तो है ही, अपने फोन में अगर किसी ने मॉर्निंग इवनिंग दुआएं डाउनलोड कर लिए तो उसमें है ही। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलकतनी व अना अब्दुका व अना अला, बहुत अच्छी। अल्लाह, और अगर नहीं पढ़ सका तो कम से कम अस्तगफिरुल्लाह 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 तो करता रहे, 100 बार तो बोल ही जाए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, दिल तो लगेगा अल्लाह की तरफ कि मैं इस्तगफार करूं, अगर आदमी करता रहे तो। और अगर कुछ नहीं तो अल्लाह मगफिर ली अल्लाह मगफिर ली अल्लाह मगफिर ली अल्लाह फगीब मी अल्लाह फगीब मी अल्लाह, नहीं अरबी आती है तो उर्दू में बोल, इंग्लिश में बोल, पुश्तू में बोल, पंजाबी में बोल, बांग्लादेश में बोल, लेकिन बोल अल्लाह मगफिर ली, अल्लाह कसम ज़बान आती है अल्लाह मगफिर ली। लोग कहते हैं यार दिल ही नहीं लगता है ना, दिल ही नहीं लगता, दूसरी सारी चीजों में दिल लगता है लेकिन दीन के काम में दिल नहीं लगता। हमारे हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया हजरत का कोई मुरीद और कहा हजरत जिक्र में दिल नहीं लगता, बस नमाज पढ़ी भागा, दिल लगता ही नहीं। मस्जिद में आदमी आए या मुसल्ले पर अगर औरत बैठे और उसका दिल लगे बैठी रहे, उसका दिल ऐसा है कि बैठी रहे जिक्र करती रहो, तो समझो उसका दिल पाक है। और अगर मस्जिद में आया और कब भागू दिल में ऐसा आता रहा तो उसको कसरत से इस्तिगफार करना चाहिए, इसका दिल नॉर्मल नहीं है, ये निशानी उलमा ने बताई है। हाँ, तो हजरत के पास एक आदमी आया, कहने लगा हजरत जिक्र में दिल नहीं लगता, जिक्र के अंदर में दिल लगता ही नहीं। हजरत ने फरमाया किए जाओ किए जाओ किए जाओ, ना लगे फिर भी जबरदस्ती करो, करते जाओ करते जाओ। उसके बाद हजरत ने क्या फरमाया, बहुत बड़ी बात बयान फरमाया, बहुत बड़ी। हजरत ने फरमाया अल्लाह का नाम तुम कितनी ही गफलत के साथ क्यों ना लो, क्या कह रहा हूं मैं, अल्लाह का नाम कितनी ही गफलत और गाफिल होने की हालत में क्यों ना लो, वो जरूर असर करेगा, चाहे तुम गफलत में बोलो असर जरूर। हाँ, फिर आगे कहा लेते रहो अल्लाह का नाम, लेते रहो, एक दिन दिल पर असर करेगा, लेकिन करे ही नहीं तो फिर असर कैसे करेगा, ये बात। इसलिए अहादीस के जखीरे में आप देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से पनाह चाहिए, जहन्नम से, कब्र के अजाब से, फितनों से, और ऐसे इल्म से जो फायदा न पहुंचाए, बहुत सारी है। अल्लाह के गुस्से से पनाह चाहिए, अल्लाह के गजब से पनाह चाहिए। तो कुरान करीम के शुरू करने से पहले, फिर आगे हमें कुरान करीम के शुरू करने से पहले क्या पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अब ये औज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म कुरान से पहले क्यों दिया, किसी और जगह में औज़ु बिल्लाह का हुक्म नहीं है, ऐसा नहीं कहा कि भाई तुम ज़बा करो तो औज़ु बिल्लाह पढ़ो, नमाज पढ़ो तो औज़ु बिल्लाह पढ़ो, कहीं नहीं हुक्म। लेकिन कुरान में, कुरान की पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाह फ़ैदा करातल कुरान फस्तईज़ का जिक्र दिया बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। तो तावुज़ का और औज़ु बिल्लाह का हुक्म का मीनिंग यूं समझ लो, जैसे एक बच्चा हो, छोटा बच्चा अपनी मां के साथ चल रहा हो और एक आदमी कुट्टा लेके आ रहा है हाथ में सामने से, बड़े बड़े भी डरते हैं, कुट्टा आता है, बड़ा कुट्टा लेकर आ रहा है, तो वो बच्चा जो है कुट्टा देखकर डर रहा है, छोटा बच्चा है, हो गया डॉग को देखकर डर रहा है, तो वो क्या करता है, माँ के अंदर में घुसने की कोशिश करता है, इधर जाता है इधर जाता है, कहते उसको काटना, हालांकि उसको काटने वाला नहीं है लेकिन डरता है। तो मां की तरफ लपट कर कहता है, अम्मी अम्मी डॉग इज कमिंग, कहता है ना, गोया ये मां से मदद मांगता है। ये तो मतलब हुआ मां से क्या है, तो मां उसको क्या इस तरीके से दबा लेती है, कुछ नहीं होगा, कुत्ता चला जाता है। तो जिस तरह किसी दुश्मन से और उस कुत्ते से भागकर पना लेने के लिए वो बच्चा मां से लपट जाता है जी, उसके जहन में मां की मदद का इस्तेजार है कि मेरी मां मेरी मदद करेगी, है ना, उसके जहन में है कि मां मुझे हक कर लेगी, मुझे बचाएगी, मुझे अपनी गोद में उठा लेगी, छोटा बच्चा होता है उठा लेगी। तो ताऊज का यही माना है, ताऊज का अगर माना समझ में आ गया तो कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, जब हम कुरान शुरू करने से पहले कहते हैं तो हम कहते हैं अल्लाह मेरे सामने दाई तरफ बाई तरफ आगे और पीछे, शैतान ने कहा है ना, मैं आऊंगा तेरे बंदे के पास, मिम्बई अईदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन यमीनिहिम व अन शिमालिहिम, मैं चारों तरफ से तेरे बंदे के पास आऊंगा, चारों तरफ से आऊंगा। तो ये दुश्मन सामने बैठा है, ये दुश्मन ऐसा है जो नजर आता नहीं, दुश्मन नजर नहीं आता। दुश्मन तो हमारे बहुत सारे हैं, जाहिरी दुश्मन भी है, बातिनी दुश्मन भी है जी, फैमिली दुश्मन भी है, दोस्त दुश्मन भी है, जमातों में भी है, मुल्क में भी है। मुसलमान का कौन दुश्मन नहीं, कोई इंतहा ही नहीं दुश्मनों की, दुश्मनों की कोई इंतहा ही नहीं। सफेद जब्बा पहन लिया बोल साहब ने तो भी दुश्मन, काला पहने तो भी दुश्मन जी, समझ में आती है बात। अब इंसान का कौन दुश्मन है, हर जगह दुश्मन होता, लेकिन मगर उन सब में सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन जिसके लिए अल्लाह पाक ने कहा मेरी तीन सिफात का नाम लेना है, रब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, ये खन्नास से बचने के लिए रब्बिन्नास आऊद भी रब्बिन्नास, मैं पना चाहता हूं रब्बिन्नास से, मलिकिन्नास से, इलाहिन्नास। जाहिरी दुश्मन के लिए तो एक ही सिफत है ना, बोला आऊद भी रब्बिल फलक, फलक का माना क्या है, अंधेरे से अल्लाह ताला अंधेरे को निकालता है, रोशनी को दीन को लाता है, इसके माना फलक है। ए अल्लाह तू वो जात है, मैं पना चाहता हूं तुझसे, तू वो जात है जो अंधेरे को खत्म करके दीन को ले आता है, मैं चार दुश्मनों से पना चाहता हूं, कौन कौन से, मिन शर मा खलक व मिन शर गासिक इज़ा वक़ब व मिन शर नफ्फासात फिल उक़द व मिन शर हासिद इज़ा हसद, चार दुश्मन है, सारी मखलूक से बचा लेना जी, रात के अंधेरे में बूढ़े कामों से बचा लेना, और फूंके मारने वाले, बालों पर जादू करने वाले, अल्लाह के नबी के बाल पर क्या था ना, उससे बचा, जादूगरों से बचा लेना, और साथ में क्या है, हसद करने वाले के हसद से। तो वह एक ही सिफर लाए हैं, फलक फलक, नाऊज़ बिरब्बिल फलक, क्यों, इसलिए सब जाहिरी दुश्मन है, जाहिर दुश्मन के लिए एक सिफत है, लेकिन जो अंदर में है ना, वो शैतान जो नजर नहीं आता, उसके लिए अल्लाह ने तीन तीन सिफत का जिक्र किया, रब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर ये सब तो नजर आते हैं, वो नजर जो हर वक्त मेरे और आपके साथ होता है, मर्द के साथ भी औरत के साथ भी, आगे पीछे हर वक्त है, जिस दुश्मन से ना आपका बाप आपको बचा सकता है, ना आपकी मां बचा सकती है, ना भाई बचा सकता है, ना कुंबा, ना पूरा मुल्क बचा सकता है, कोई बचा सकता है उसे, उस दुश्मन से कोई नहीं बचा सकता, बहुत मुश्किल है। चाहे तुम पहलवान को ले आओ, वो भी नहीं बचा सकता, समझ में आई बात। मेरे पास एक पहलवान आया था बर्मिंघम से, ऐसा वो जो लड़ते हैं ना अखाड़े में, वो आया था, ओ उसको ये ऐसा ऐसा, ओहो बनियान पहना हुआ था, तो यहां तक का शर्ट शॉर्ट पहना हुआ था, और उसको नया दे रखा। मैंने कहा आज तो तेरा मुकाबला है या फिर अखाड़े में मेरा मुकाबला है, कौन जीतता है। अब उसमें जिन था, शैतान था उसके अंदर में, अब दो हो गए, एक तो शैतान और एक खुद, समझे, लेकिन कुरान से बढ़कर कोई, सूरतुल नास से बढ़कर कोई, सूरतुल फलक से बढ़कर कोई पावर नहीं है। मैंने जब पढ़ा तो उसने कहा माफी मांगता हूं, मैं चला जाता हूं,
समझ में आई बात? ये है रब्बी नास मलिक नास इलाही नास का पावर, समझ में आई बात? हालांकि वो इतना बड़ा ऐसा और साथ में शैतान, दो चीज उसने मुझे बाद में बताया कि मेरे साथ शैतान की लड़ाई होती रही, मुझे नजर आता था घर में, मैं लड़ता रहा लेकिन मैं वो मुझ पर हावी हो गया और मेरे अंदर चला गया। तो फिर उसको तो बेहोशगी होती थी इतना बड़ा आदमी को। मैंने कहा भाई उसके उसके मुकाबले के लिए तो कुरान है। क्या है? कुरान है, सूरह फलक है, सूरह नाज है। यही यहां बताता हूं मैं कि कितना ही बड़ा पहलवान हो तुम्हें नहीं बचा सकता शैतान से, ना कोई मां बाप, ना कोई दुनिया, ना कोई हुकूमत, ना कोई आर्म फोर्स, कोई नहीं बचा सकता। और उस दुश्मन का नाम क्या है? शैतानुर रजीम। क्या है भाई? शैतानुर रजीम। अगर कोई बचा सकता है तो वो अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात है। समझ में आ रही बात? बहुत सारे कहते हैं भाई तो फिर अल्लाह ने मिनल जिन्नती वन नास क्यों कहा? जिन्नात और लोग, इंसान। हाँ, शैतान भी जादूगर होता है, लोग भी जादूगर होते हैं, रातों में जादू करते हैं। तो कुरान एक ऐसी किताब है कि रात के अंधेरों में जो जादू करने वाले उससे भी बचाने वाला कुरान है, क्योंकि वो शैतानी काम करते हैं। असल तो शैतानी है ना, तुम शैतान की मदद करते हो तो शैतान तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन तुम शैतान की मदद न करो तो शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा मदद करने के लिए। बेशुमार वाकयात है, हजारों वाकयात। तो ये है कि अल्लाह की जात ही सिर्फ बचाने वाली है, जैसे मां उस बच्चे को कुत्ते से बचाती है। और हमारा कुत्ता तो यही है, हमारा कुत्ता कौन है? शैतान है। उस शैतान से बचने के लिए अल्लाह ने कहा अब तू जा रहा है, घुस रहा है कहां? कुरान के अंदर में, वह समंदर के पानी में जा रहा है। उससे पहले तू क्या कर? कुरान पढ़ने से पहले औद बिल्लाही मिनश शैतान रजीम पढ़ ले, तो तेरे पढ़ाई में कोई दखल नहीं देगा। अब फरिश्ते तेरी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। शैतान किसी को छोड़ता नहीं है, किसी को छोड़ता नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मकाम को कौन नहीं पहचानता? पीराने पीर थे वो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो तमाम औलिया अल्लाह के सरदार थे। सफर में थे एक मर्तबा, शाम का वक्त था, बादलों में से आवाज आई, इकबाल। क्या आवाज आई? अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर। उसने कहा हर वक्त तू हमें पुकारता रहता है, या अल्लाह या रहमान, नमाज पढ़ता रहता है, कुरान पढ़ता रहता है, अब तुझे पुकारने की जरूरत नहीं, सब कुछ माफ। नमाज माफ, रोजा माफ, जिक्र माफ, कुरान माफ। आवाज आई कहां से? बादलों में से, एक रहे से, कहां से आवाज आ रही है? ऊपर से आ रही है। समझ में आई बात? और मेरे जैसा होता तो मस्जिद में आके ऐलान करता, आज तो मेरे आसमान से अल्लाह ने मुझे बता दिया नमाज माफ। समझ में आई बात? मैं बुजुर्ग बन गया। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ओहो तू तो दुश्मन है इब्लीस, काश कि हम भी पहचानते शैतान को, हमें कितना रोक लेता है, हर काम नेकी से हमें रोकता है। समझ में आई बात? रोकता है। अश्शैतानु यईदुकुम अल-फक्र वयअमुरुकुम बिल-फहशा, शैतान तुम्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से रोकता है कि फकीर हो जाएगा, ज्यादा मत दे, बस ज़कात दे के खत्म कर, सदका मत दे, रोकता है, रोकता है। कुरान कह रहा है ना अश्शैतानु यईदुकुम अल-फक्र, फकीरी से रोकता है और तुम्हें ऐसी जगह में खर्च करवाता है जो हराम काम है। वह अमरुकुम बिल फहशा, और शेमलेस कामों की तरफ हुक्म देता है, ये करना, ये करना, ये करना, ये खर्च करना। समझ में आई बात? और क्या है? 500 पाउंड की टीवी है, वो बीवी को कहता है 500 में आई, मिलती है 700 में, और 700 दे देता है। देखा कहां खर्च किया उसने, अल्लाह के रास्ते में इसको कहे 700 दे, नहीं, 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 नहीं। उम्र को मिल पाशा करेगा।
और आगे अल्लाह क्या कह रहे, वल्लाहु याईदुकुम, शैतान का हुक्म कुछ और है, अल्लाह कह रहे वल्लाहु याईदुकुम,
अल्लाह का हुक्म भी सुन लो इसी आयत में, मगफिरा वो अदला,
तुम खर्च करो इधर तुम्हारी मगफिरा,
इधर मगफिरा,
तो शैतान तो मना करेगा। 5 पाउंड लिल्ला देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, सदका देना,
जकात तो देनी इसलिए कि वो तो फर्ज की गई है, हमने बार बार सुना है कि अगर तुमने जकात नहीं दी है तो फिर सांप बन जाएगी और तुम्हें काटेगी, होते वो अजाब है ना, वो अजाब उससे हम डरते हैं, इसलिए हम दे रहे हैं, वो तो देना ही देना है, नहीं अजाब सांप को कौन, सांप को कौन बर्दाश्त करेगा, कब्र ही से शुरू हो जाएगा, ये तो हदीस में सही हदीस है, इसलिए दे रहे हैं, लेकिन सदके पर तो कोई अजाब नहीं है, है? और लिल्ला पर तो कुछ नहीं। अब वो 5 पाउंड निकालना बड़ा मुश्किल है, वो नहीं निकलता, 10 पाउंड 100 पाउंड निकालना बड़ा मुश्किल है, ये शैतान कहता है, समझ में बात आ रही है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या कह रहे, इब्लीस मेरे नबी पर नमाज माफ नहीं हुई तो मुझ पर कैसे माफ होगी, मेरे नबी पर जो इमाम अंबिया थे उसको तो अल्लाह ने कहा नहीं, अब उनको भी कह रहे हैं तुम बूढ़े हो रहे हो, इजा जा नसरुल्लाह वल फतह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، افواج کے معنی لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، تم آئے تھے مکہ میں ایک آدمی ابو بکر تھے، یہاں پر مدینہ میں 1,24,000 ہو گئے، مسجد بھر گئی، اب تمہارا کام کیا ہے، ایسا نہیں کہ جا کے سوتے رہو، فسبح بحمد ربک واستغفر، استغفار کرو، ذکر کرو، اللہ اللہ کرو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ، आओ अल्लाह की तरफ झुको, नहीं कहो इमामुल अंबिया अब तुम्हारे लिए आराम है, नहीं बुढ़ापे में भी कसरत से पढ़ते थे आप सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अजीम अस्तगफिरुल्लाह सुभानक अल्लाहुम बिहम्दिक अस्तगफिरुल्लाह, कसरत से पढ़ते थे आप बुखारी शरीफ में, बहुत कसरत से आखिरी उम्र में पढ़ते थे आप, जिक्र करते थे, उम्र हो गई बस हाथ में तस्बीह और तस्बीह और अल्लाह 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 इस्तिगफार दुरूद शरीफ पढ़ते थे। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने फरमाया तू शैतान है अल्लाह नहीं है, मेरे नबी पर माफ नहीं तो मुझ पर कहा माफ हो गया, तो क्या कहा, बच गया तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया, क्या कहा, तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। तो शेख कह रहे मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, अल्लाह ने मुझे बचाया, ये इसीलिए मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्ला ने जब क्या कहते थे विशाल इंतकाल के 2 दिन पहले वहां मदीना मुनव्वरा में जिस रूम में सोते थे वहां कुछ मुनीदीन भी बैठे रहते थे खिदमत के लिए हजरत के, अब 2 दिन बाद 2 दिन के बाद इंतकाल हो गया, तो हजरत ने ऐसे कोने में देखा गर्दन मोड़ के फेर कर जैसे कोई आदमी देखता है ना कौन है ऐसे देखा और फरमा मारो इसको, क्या फरमाया मारो इसको, तो मुरीदीन ने कहा हजरत बोल रहे हैं बात कर रहे हैं सब कुछ, एक आदमी तो दिमाग खत्म हो जाएगा, क्या कह रहे हैं यहां तो कोई चीज नहीं है, किसको मारने का हुक्म दे रहे हैं, कोने में तो कोई नहीं है, न कोई चीज है न कोई बिल्ली है न कोई इंसान न कोई कुत्ता है कुछ भी नहीं, तो हमने कहा हजरत किसको मारे कोई नजर तो आता नहीं है कौन है, फरमा मारो इसको, फिर फरमाया मारो इसको, फिर हजरत मुस्कुराए हंसने लगे, तो हमने पूछा हजरत आपने किसके मुतालिक फरमाया कि इसको मारो, फरमाया वो इब्लीस यहां खड़ा था कोई उससे बच नहीं सकता, तो मैंने कहा इसको मारो, देखा किसी को नहीं छोड़ता, इमाम अहमद बिन हंबल 100 मरतबा अल्लाह को ख्वाब में देखा है फिर भी मौत के वक्त आया और बेटा कलमा पढ़ रहा है तलकीन कर रहा है तो ला नहीं कहा, ला बेटा घबरा गया कि अब्बा कलमा पढ़ने से इनकार कर रहे, जब होश में आए थोड़ी देर के लिए तो पूछा अब्बा मैं कलमा पढ़ा रहा था आप ना कह रहे थे, तो मैं तुझे नहीं मैं शैतान को कह रहा था, शैतान मुझे कह रहा था कि तू बच गया,
तू बच गया मुझसे। तो मैंने कहा ला अभी भी नहीं बचा, जब मेरी सांस निकल जाएगी तब बचूंगा तुझसे। तो शैतान से कोई नहीं बच सकता। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में है, दोनों जहां के सरदार हैं, तमाम अंबिया के सरदार हैं, नमाज के दरमियान में शैतान आपकी नमाज को खराब करने के लिए आ गया, नमाज के दरमियान में आ गया। आप सरासर फरमाते हैं मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसको क्या है और पकड़ कर इतने जोर से उसको दबाया उसका गला, यहां तक कि मैंने देखा उसके मुंह से राल निकलने लगी, मुंह का पानी मेरे हाथों पर टपक रहा था, ऐसा उसका ठोक है मैंने दबा दिया उसका। हदीस में है, मैंने सोचा कि मैं इसको पकड़कर मस्जिद के सुतून के साथ बांध दूं इसको, ये सुतून होता है ना मस्जिद के सुतून के साथ उसको बांध दूं ताकि मदीना मुनव्वरा के बच्चे बच्चे इस इबलीस के साथ खेले, उसको मारे खेले, जैसे हम बॉल के साथ फोन के साथ हम खेलते हैं ना ऐसे खेले। मगर फिर मुझे हजरत सैयदना सुलेमान अलैहि सलाम की दुआ याद आ गई। कौन सी दुआ याद आ गई? वो क्या है, उन्होंने कहा था अल्लाह मेरी जैसी हुकूमत दुनिया में किसी को न देना, यानी उनके कंट्रोल में था ना सारे जिन्नात सारे शैतान, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो हर वक्त खतरा है, हर वक्त क्या है खतरा है। तो जब हम औऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ें, اللهم اني اعوذ بك ऐसी दुआएं पढ़ें, तो हम गौर करें कि हम क्या कह रहे हैं। ए अल्लाह मैं पना चाहता हूं, मैं तेरी पना में आता हूं इस शैतान मर्दों से, मुझे बचा ले। ध्यान के साथ पढ़े, जब हम औऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं ना तो ध्यान के साथ पढ़े। जब आदमी ध्यान के साथ पढ़ेगा तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद करेगा। आई बात समझ के अंदर में? तो हम जब कभी, तो हमने वाकया बयान कर दिया कि कुरान से पहले अल्लाह पाक ने, तो कुरान सबसे बड़ी दौलत है जो अल्लाह पाक ने हमें दी है। अल्लाह पाक हमें कुरान पढ़ने से पढ़ने की तौफीक दे, खोल के थोड़ा सा भी कम से कम यासीन शरीफ तो पढ़ लें, कम से कम मंजिल पढ़ लें, कम से कम आयतुल कुर्सी पढ़ें, आखिरी सूरते पढ़ें, कुछ ना कुछ तो पढ़ें, चलते फिरते कुल हुवल्लाहु अल्लाह वादि पढ़ते रहे, कोशिश करें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शैतान से हमारी क्या करेगा हिफाजत करेगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। या अरहमुर राहिमीन या ज़ल जलाल वल इकराम, हमारी मस्जिद के मुसल्ली वलीउल्लाह का इंतकाल हो गया है, माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी थे, उनके लिए दुआ करो। ये फरमानुल्लाह के भाई हाफिज़ फरमानुल्लाह के भाई है, अभी जोहर की नमाज में उनकी वहाँ मस्जिद बिलाल में उनका जनाजा है। अल्लाह ताला मरहूम की मगफिरत फरमावे, अल्लाह ताला उनके आखिरत के दर्जात को बुलंद फरमावे, अल्लाह उनके पसमानदगान को सब्र जमील नसीब फरमावे। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाल वजहिक वल अज़ीम सुल्तानिक, अल्लाहुम्म लकल हम्द कुल्लु वलकल मुल्क कुल्लु वबियदिकल खैर कुल्लु वइलैक युरजउल अम्र कुल्लु अलानियत वसिरुकल हम्द इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हमें माफ कर दे, बड़े गुनहगार है, बड़े मुजरिम है, बड़े पापी है। ए अल्लाह हमारी हमारे हमारे गुनाहों के रजिस्टर गुनाहों से भर चुके हैं, अल्लाह तू माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह उसको डिलीट कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह रहम कर दे, करम कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, रहम कर दे, करम कर दे। ए गफूर तेरा नाम गफूर का वास्ता, ए रहीम तेरा नाम रहीम का वास्ता, रहमान का वास्ता, गफारियत का वास्ता। ए अल्लाह सत्तारुल अयूब सत्तार, तेरे नाम सत्तार का वास्ता, अल्लाह हमारे गुनाहों को छुपा ले, माफ कर दे, खत्म कर दे। ए अल्लाह हम सबको नेक और सालिहीन में से बना दे, औलिया काबिलीन में से बना दे, तेरे महबूब बंदों में से, तेरे महबूब बंदियों में से बना ले। अल्लाह हमारा आना बैठना सुनना कबूल फरमा, हमारा आना बैठना सुनना कबूल फरमा। या अल्लाह हमें सेहत और आफियत नसीब फरमा, बीमारियों को दूर फरमा, जिस किस्म की बीमारियों में छोटी हो या बड़ी हो, दुख हो दर्द हो जो भी हो, ए अल्लाह जो भी बीमारी हो, ए अल्लाह उन तमाम से हमारी हिफाजत फरमा, हमें शिफाए कामिला नसीब फरमा, और आने वाली बीमारियों से परेशानियों से हमारे
اور حفاظت فرما. اے اللہ جو بے قصور جیلوں میں ہیں, اے اللہ ان کی رہائی کا, ان کی رہائی کی صورتیں پیدا فرما, ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جو بے قصور جیلوں میں, اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما. اے اللہ چھوٹنے کے لیے کوئی راستے اور کوئی آسان صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جو ہسپتالوں میں انہیں آسان, اللہ ان کو شفا کامل عاجلہ نصیب فرما. جو گھروں میں جہاں کہیں بیمار, اللہ سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمان, غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما, مدد فرما. اے اللہ ان کے ہموم گموم کو دور فرما. اے اللہ ان کو قوت نصیب فرما, ان کو طاقت نصیب فرما, ان کو کھانا نصیب فرما, ان کو پینا نصیب فرما. اے اللہ سردی ہے وہاں, بارش ہے, مکان نہیں, کھلے آسمان کے نیچے سوئے ہیں, بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, بوڑھے. اے اللہ العالمین سب کی جان مال ابو عزت کی حفاظت فرما, سب کی جان مال ابو عزت ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ لوگ انہیں ترا رہے ہیں, لوگ انہیں ترا رہے ہیں, ایمان کو چھوڑ دو, دیکھو تمہارا اللہ تمہاری مدد نہیں کرتا. اے اللہ انہیں ایمان پر ثابت قدری نصیب فرما, ان کے شہداء کو قبول فرما, ان کے شہداء کو قبول فرما, ان کے زخموں والوں کو اے اللہ تو شفا کاملہ نصیب فرما. اے اللہ ان کی چاروں طرف سے حفاظت فرما, چاروں طرف سے حفاظت فرما, مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما, حرم شریفین کی حفاظت فرما, پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, جان کی, مال کی, آبرو کی, عزت کی, ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے مرحوم ولی اللہ کا انتقال, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ جنت کا باغ بنا, آخرت کے سارے مراحل اللہ آسان فرما, منکر نکیر کے سوال کا جواب دینا آسان فرما. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا, ان کی نیکیوں کو قبول فرما. اللہ العالمین نماز کے پابند تھے, اللہ ان کو قبول فرما, ان کی مغفرت فرما, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے اللہ ان کی سارے سیئات کو معاف فرما دے. اللہ العالمین ہم سب کو ایمان پر باقی رکھنا, جب ہماری موت آئے ایمان پر موت ڈالنے دینا. اللہ اپنے فضل و کرم سے, رحم و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.